ऑस्ट्रेलिया गए थे तो गाड़ी में जा रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, तो उस समय सड़क पे सब लोग जा रहे थे और एक नवयुवकों और युवतियों का जो दल है वो वहां पास में से जा रहा था, हंसते खेलते वो जा रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने देखा, उनके आंखों में थोड़ा आंसू आ गया, गीला हो गया। तो उनके साथ एक शिष्य बैठे थे कि वो पूछे कि क्या बात है प्रभुपाद जी, क्या कोई समस्या है? बोले नहीं, मैं देख रहा हूँ कि ये लोग कितने दुखी हैं लेकिन अपने आप को कितना सुखी समझ रहे हैं, देखो इनको। तो ये है भौतिक जीवन, संसारी जीवन। तो संसारी जीवन में केवल दुख ही है, कोई सुख नहीं है। यही संस्पर्श जा भोग दुख यो न एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। ये संसार का सुख जो है ये दुख से उत्पन्न होता है, दुख करने कष्ट झेलने के सिवाय सुख नहीं मिलता, और वो सुख अनुभव करने के बाद भी दुख होता है और उस दौरान भी दुख होता है। तो वास्तव में ये संसार के सुख दुख में और ब्रजवासियों के सुख दुख में जमीन आसमान का अंतर है। तो खैर, ये चार कारण हैं और एक पांचवा कारण भी है, और पांचवा कारण ये है कि भगवान श्री कृष्ण एक ग्वाल बाल की लीला कर रहे हैं। गोप समाज में उन्होंने जन्म लिया है, और गोप समाज की जीविका कहां से आती है, आमदनी कहां से मिलता है उनको? गायों से। और गायों को, गायों से आमदनी चाहिए, गायों से दूध चाहिए, तो गायों को क्या करना पड़ेगा? चारा खिलाना पड़ेगा। अभी देखिए, हमारे छोटे छोटे घरों में, गौशालाओं में कितने गाय होते हैं, 5, 10, 20, ठीक है, बड़ी 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 गौशालाओं में थोड़े हजार गाय होंगे। कोई बता रहे थे कि राजस्थान में या गुजरात में एक गौशाला है जिसमें 5,000 गाय हैं। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई आजकल के हिसाब से, किसी गौशाला में 5,000 गाय हैं तो वास्तव में कोई बात करने की चीज है। लेकिन वैदिक काल में तो कोई भी धनी व्यक्ति होता था, उसके पास इतने गाय होते ही थे, और राजाओं के पास तो लाखों गाय होते थे। और नंद महाराज वृंदावन में, ये तो गांव के राजा थे, कोई बड़े ऐसे देश के राजा नहीं थे जैसे राजा उग्रसेन थे, शूरसेन थे। और नंद महाराज के पास 900,000 गाय थे, और अन्य जो गोप हैं उनके पास उनके अपने अपने गाय। कितने गाय हुए होंगे ब्रज में? अभी इन सबको अगर आदमियों ने जाके चारा खिलाते रहना है, संभव है क्या? 900,000, लाखों लाखों गाय को कैसे खिला सकते हैं? एक ही उपाय है, उनको वन में चरने के लिए ले जाना है, फिर उनको अपना अपना भोजन लेना है। और यही भगवान ने बनाई हुई पद्धति है गायों को खिलाने के लिए। तो इस तरह से ये पांच कारण है, और भी कारण है, बहुत सारे कारण, लेकिन कई कारण, थोड़े कारण ये है कि कृष्ण भगवान सुबह सुबह हर रोज अपने ब्रजवासी भक्तों को छोड़कर और केवल अपने गायों को और ग्वाल बाल मित्रों को लेकर वन में जाया करते थे। तो इस तरह से जब उन्होंने देखा कि ये सारे ब्रजवासी बड़े दुखी हैं और इस तरह से खड़े हैं जैसे कि प्रतिमा इत्यादि, उनके चेहरे से तेज निकल गया है और ऐसे लगता है कि उनको कोई भूत सवार हो गया है, तो ब्रजवासियों को पुनः जीवित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपना बाजा बजाया। भगवान श्री कृष्ण जब जाते हैं वन में तो उनकी कई प्रकार की सामग्री होती है। परसों हम चर्चा कर रहे थे कि आजकल के जमाने में जब व्यक्ति घर से निकलता है तो उसकी सामग्री या जो पैराफर्नेलिया होता है साथ में, वो अलग अलग होता है। अभी आप आपके घर से निकले तो क्या क्या लेकर निकले? मोबाइल फोन, और कार की गाड़ी, स्कूटर की गाड़ी है ना, घर की चाबी, और बहुत सारी चीजें। हो सकता है आपका पर्स आपके लेके निकले हों, मतलब बहुत सारी चीजें आधुनिक काल में। तो उसी तरह से कृष्ण भगवान भी अपने अपने चीज लेकर कर निकलते थे। पहली चीज तो बांसुरी, साथ में उनका बाजा हुआ करता था, भैंस का सींग, बफेलो हॉर्न, उससे वो बाजा बजाते थे। साथ में गाय चराने की छड़ी, फिर रेशम की डोरी जिससे कि वो कभी कभी गायों को पैरों को बांध सकते थे, और ना उनका फिर टिफिन का डब्बा वहां जाके प्रसाद लेना है, ना तो घर से बांध के देते थे जैसे माताएं आजकल बच्चों को स्कूल जाते समय भेजती हैं। तो हर एक ग्वाल बाल के पास अपना अपना डब्बा रहता था, वो भी बांध के लेके जाते थे। कभी कभी उस डब्बे को छड़ी के अंत में झुला कर बांध कर छड़ी को ऐसे ऊपर कंधों पे ऊपर लेके जाते थे। तो ऐसे उनकी सामग्री थी, उनकी पैराफेरनलिया थी। तो कृष्ण भगवान के पास उनका बाजा है, जैसे उनके चक्र का नाम है सुदर्शन, वैसे उनके बाजे का नाम क्या है कोई जानते हैं? उनके शंख का नाम क्या है? पांचजन्य। और उनके बाजे का नाम है मंदघोष। तो भगवान श्री कृष्ण ने जोर से अपना मंदघोष बजाया पुनः उनको जागृत करने के लिए, सारे ब्रजवासियों को, जो कि ऐसे ही खड़े थे जैसे प्रतिमा की तरह। फिर सारे ब्रजवासी जाग गए और फिर अपना शरीर को हिलाकर वृंदावन में, गांव में वापस चले गए। शरीर को हिलाना मतलब क्या? मतलब केवल शरीर वापस चले गए वृंदावन। उनका मन कहाँ था? कृष्ण के साथ में ही था। मन कृष्ण को छोड़ नहीं सकता था कभी ब्रजवासियों का, लेकिन केवल शरीर हिल गया और हिला नहीं, हिलाया गया। क्यों? क्योंकि उनमें से खास जो प्रमुख प्रमुख जो भक्त थे वो वहां से हिल भी नहीं पाए, दूसरे लोग उनको लाकर लेके आए वापस। जैसे कि नंद महाराज और यशोदा मैया, वो तो खड़े खड़े उधर बस उनको ऐसे खड़े थे जैसे उनको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, आ रहे हैं जा रहे हैं क्या हो रहा है, बस ऐसे ही खड़े थे। फिर जो वरिष्ठ गोप गोपियां हैं उन्होंने उनको हाथ से पकड़ कर वापस ले गए, वापस ले जाकर घर में उनको बिठाया। हाँ, फिर उनको पंखा कराया, थोड़ा मालिश किया, थोड़ा जल दिया। हाँ, और जो ग्वाल बाल थे छोटे जो नहीं जा सके थे वो अपने हाथ एक दूसरे के हाथ पकड़कर रो रहे थे, एक दूसरे को वापस ले जा रहे थे। और जो गोपियों के ग्रुप्स होते थे, दल होते थे, उनकी नेता जो होती थी नेता, वो भी वैसे ही खड़े थे तो उनको हाथ पकड़ कर ले जाते थे। फिर उनको वहाँ बिठा कर किसी न किसी तरह से उनको जल देते थे, पानी छिड़कते थे आंखों पे, उनके पैर मालिश करते थे उनको प्राण वापस लाने के लिए। और इस तरह से सारे ब्रजवासी किसी न किसी तरह से वापस चले गए और कृष्ण भगवान अपने वन में चले गए। अब ये हमें याद रखना है कि ये रोज सुबह की घटना है। अभी जो भी हमने वर्णन किया आज तक, रोज सुबह होता था, हर रोज। लेकिन जैसे हम पहले चर्चा कर रहे थे, हालांकि हर रोज होता था फिर भी कैसे लगता था? जैसे कि आज पहली बार हो रहा है। ये है कृष्ण लीला की खूबी, कृष्ण लीला का रस ऐसे है, नित्य नव नवायमान, हमेशा फ्रेश लगता है, कभी घिसा पिटा नहीं लगता। कभी ग्वाल बालों को, गायों को, कृष्ण बलराम को नहीं लगता था कि अरे क्या फिर से अभी जाना है। जैसे हमें ऑफिस जाते टाइम, कहीं बाहर जाते टाइम लगता है अरे फिर से अभी बिजनेस में जाना, ऑफिस में जाना, फिर से रसोई घर में जाके पकाना, ऐसे कभी उनको नहीं लगा क्योंकि वो कृष्ण के साथ थे। बल्कि उनको यही लगता था कि कब सूरज का उदय होगा और हम निकल पड़ेंगे। और जो बाकी भक्त हैं ब्रजवासी, उनको क्या लगता था? कब सूर्यास्त होगा? देखिए, भावनाएं, धारणाएं, दृष्टि सब अलग अलग हैं अपने अपने दृष्टि के हिसाब से। ग्वाल बाल तो ज्यादा से ज्यादा खेलना चाहते हैं, जब सूर्यास्त होगा वो उदास हो जाते हैं, अरे रे वापस घर जाना, अभी कृष्ण का संग हमें नहीं मिलेगा, फिर हमें अपने घर में जाना होगा, कृष्ण उनके घर में चले जाएंगे। तो वो सूर्यास्त नहीं चाहते हैं। लेकिन एक बार वो सब निकल गए तो सारे बाकी ब्रजवासियां सूर्यास्त को चाहते हैं कि जल्दी, कितने देर भी ऊपर हो, अरे क्या हो गया, कोई ट्रैफिक जैम है क्या, है अटक गए ऊपर, हिलते नहीं हो वहां से, कितना समय हो गया हम देख रहे तुम वहीं पर हो, अरे चलते रहो जल्दी जल्दी, कृष्ण आएंगे वापस। तो ये है बाकी ब्रजवासियों की भावना। तो इस तरह से जब सारे ब्रजवासी वापस चले गए और खास करके गोपियां, वो अपने घर में काम छोड़कर चली आई थी। अभी हो सकता है कि जब वो ज्यादा समय घर से निकल आई तो घर में सास सभी बैठ रही होंगी, अरे इतना देर हो गया, कहाँ गए, क्या हो गए, तो डर था तो वापस चली आई थी। लेकिन इसके पहले कि सांसों से कोई शिकायत आए, तब से उसी क्षण अचानक एक घटना हुई क्या घटना हुई? चुकूज वेणुम, जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण अंदर जा रहे थे वन में, वैसे वैसे क्या होने लगा, भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाना आरंभ किया। और ये वर्णन अभी तीसरे श्लोक में हम पढ़ेंगे वेणु गीत का, कि उस समय जैसे भगवान श्री कृष्ण ने वेणु बजाना आरंभ किया तो क्या हुआ। तो हमारे पीछे पीछे ये श्लोक हम पढ़ेंगे। शायद आज तो एक ही श्लोक की चर्चा करने का समय होगा और ऐसे लगता है कि सारा वेणु गीत इस पर नहीं हो पाएगा, तो ठीक है, आधा इस बार करेंगे। जितने भी श्लोक होंगे इस अध्याय में 20 श्लोक हैं और आज हम केवल तीसरे श्लोक पर हैं, तो अगर इस बार नहीं होगा तो अगले साल फिर बाकी श्लोक उनको करेंगे कभी। तद् वज्रव्रज स्त्रियाश्रुत्य वेणुगीतं स्मरोदयम् कश्चित् परोक्षं कृष्णस्य स्वसखेभ्योऽन्ववर्णयन्। तद्व्रज स्त्रियाश्रुत्य वेणुगीतं स्मरोदयम् कश्चित् परोक्षं कृष्णस्य स्वसखीभ्योऽन्ववर्णयन्। ब्रज के गोपियों ने सुना श्री कृष्ण के वेणु का गीत, जो कि कामदेव को हृदय में जागृत करता है, तो आपस में उन्होंने श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन करना आरंभ किया। तत् व्रज स्त्रिय आश्रुत्य वेणुगीतम, तत् वेणुगीतम, उस वेणुगीत को, चुकूज वेणुम, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने चालू कर दिया था, आश्रुत्य, उसको सुना व्रज स्त्रिय गोपियों ने, तो गोपियों का भाग्य कितना महान है। वेणुगीत बहुत सारे लोगों ने सुना, गोपों ने सुना, वरिष्ठ गोपियों ने सुना, वरिष्ठ ग्वाल बालों ने सुना, गायों ने सुना, भर के सारे ब्रह्मांड भर में ये दिव्य ध्वनि फैल गई। लेकिन इस वेणुगीत का असर जिस तरह गोपियों के ऊपर हुआ और किसी की तरह किसी के ऊपर नहीं हुआ, इसकी चर्चा हम थोड़ी देर बाद में करेंगे। लेकिन ये इस तरह से गोपियों के ऊपर असर इसका क्यों पड़ा? क्योंकि गोपियां सबसे महान भक्त हैं सारे ब्रह्मांड में। भगवान के धाम में भी गोपियों के जैसे कोई कृष्ण भक्त नहीं है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु के ने कहा है, रम्या काचिद उपासना व्रजवधु वर्गेन वा कल्पिता, कि भगवान श्री कृष्ण के भक्तों में से सर्वश्रेष्ठ गोपियां हैं। जिस तरह से, जिस पद्धति से, जिस भाव से व्रजवधु वर्गेण, ये व्रजवधुओं ने भगवान श्री कृष्ण की उपासना की, वो अतुलनीय है, कोई उसकी नकल नहीं कर सकता। उनके पदचिन्हों में चल सकते हैं लेकिन नकल नहीं किया जा सकता, ये सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और इसलिए जो बड़े बड़े सन्यासी भी हुए हैं आजकल, महान भक्त हुए हैं, जो कि स्त्रियों का संग कभी नहीं करते, लेकिन फिर भी वो गोपियों को इतना महान मानते हैं, गोपियों की उपासना करते हैं, वैसे सन्यासी को एक स्त्री से क्या लेना देना है, लेकिन फिर भी जो महान भक्त है सन्यासी, वो ऐसे गोपियों का स्मरण करते रहते हैं। अगर कोई सन्यासी किसी स्त्री का स्मरण करे तो ये अच्छी बात नहीं है, उसके आश्रम के नियमों के विरुद्ध है। लेकिन भक्तों को, जो सन्यासी भक्त है, शास्त्र उनको बताते हैं कि आपको इन स्त्रियों का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये दिव्य हैं और इनका शरीर भी दिव्य है। ये कोई भौतिक शरीर धारण करके यहां नहीं आए हुए हैं। ब्रज दिव्य है, चिंतामणि है, उसी तरह से ब्रजवासी भी दिव्य है, उनका भी शरीर दिव्य है। इसलिए गोपियां अपने आध्यात्मिक शरीर लेकर यहां पर आए हैं ब्रज में। ब्रजवासियों का जो खास करके गोपियों का प्रेम है कृष्ण के प्रति, उसको पाने के लिए ब्रह्मा जी, शिव जी भी बहुत आतुर हैं। वो भी चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हमें भी ये प्रेम मिले, लेकिन उन्हें भी नहीं मिलता। इसलिए ब्रह्मा जी, शिव जी किसी न किसी तरह से ब्रज लीला में आने का प्रयास करते हैं, लेकिन किसी न किसी तरह से उनको वो नहीं शामिल हो पाते। ब्रह्मा जी तो आए थे, केवल ग्वाल बालों को आपस में कृष्ण के साथ भोजन प्रसाद ग्रहण करते हुए देखकर भ्रमित हो गए थे, वो कैसे रासलीला में, गोपियों की लीला में प्रवेश कर सकते हैं। शिव जी भी आए थे, लेकिन शिव जी को गोपी का रूप धारण करना पड़ा, और फिर वो रासलीला के बाहर वो रास स्थली की सुरक्षा करने के लिए बैठे, इसलिए उनका नाम है गोपेश्वर महादेव, तो वहां रासलीला स्थल के बिल्कुल बाहर है। तो इस तरह से ब्रह्मा जी, शिव जी गोपियों के प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं मिलता है। लक्ष्मी देवी जो कि स्वयं भगवान नारायण की धर्म पत्नी है, वो भी चाहती हैं कि वो गोपियों की तरह बने, गोपियों के जो सर्कल में, उनके दल में वो शामिल हो जाएं। तो एक बार लक्ष्मी देवी ने 10,000 साल तक ब्रज में यमुना के पूर्व तट पर तपस्या किया, बहुत तपस्या की, और केवल कंदमूल खाए, और ऐसे कड़ी तपस्या करने के बाद, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के बाद, भगवान श्री कृष्ण अपने श्याम सुंदर रूप में बांसुरी बजाते हुए वो वहां पर प्रकट हुए लक्ष्मी देवी के सामने। लक्ष्मी देवी भगवान के कौन से रूप के सानिध्य में हमेशा रहती हैं? नारायण रूप में। नारायण रूप में भगवान बांसुरी नहीं बजाते हैं, लेकिन यहां भगवान कृष्ण के रूप में आए, जो कि नारायण के भी आदि रूप हैं। जब कृष्ण आए तो लक्ष्मी देवी ने देखा कृष्ण का सौंदर्य, और वो सहन नहीं कर पाई, बेहोश हो गए, लेकिन फिर से जागृत होकर उन्होंने कृष्ण से एक निवेदन किया, एक वरदान मांगा कि मैं आपके गोपियों के संग में आना चाहती हूं, मैं भी एक गोपी बनना चाहती हूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने निस्सहाय होकर कहा कि मैं ये इच्छा पूरी नहीं कर सकता तुम्हारी। तो भगवान श्री कृष्ण भी इसमें असमर्थ रहे लक्ष्मी देवी को अपने गोपियों के दल में शामिल कराने के लिए। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी देवी भी अपने वैकुंठ की महारानी की भावना को त्याग नहीं कर पाए। अगर ब्रज में जाना है तो ये राजा रानी या बड़ा होने का योग, जो भी प्रभुत्व है, जो भी कुछ भावना है, उसको त्याग करना है, नहीं तो नहीं जा सकते। शिव जी को भी ऐसे ही कहा था गोपियों ने कि पहले अपने पुरुषत्व की भावना को त्याग करो। पुरुष मतलब भोक्ता, यहां भोक्ता केवल एक है, वो है कृष्ण, बाकी सब भोग्य है। अगर तुम अपने पुरुषत्व को भाव की भावना को लेकर आओगे तो यहां ब्रज में नहीं प्रवेश कर सकते। तो लक्ष्मी देवी भी अंदर नहीं जा पाए, और आखिर में जब लक्ष्मी देवी ने कहा मैं आपके वक्षस्थल पर रहना चाहती हूं जैसे मैं नारायण के वक्षस्थल पर रहती हूं क्षीर सागर में, तो उस समय कृष्ण ने कहा नहीं, वो भी नहीं संभव है। फिर आखिर में लक्ष्मी देवी की प्रार्थना से लक्ष्मी देवी कृष्ण के वक्षस्थल पर किस रूप में है? श्री वत्स के रूप में, जो कि एक स्वर्ण रंग का केश है। इसलिए लक्ष्मी देवी को भी गोपियों का स्थान, गोपी का स्थान नहीं मिलता है। क्या खूबी है गोपियों में कि गोपियों की का प्रेम जो श्री कृष्ण के प्रति है अति तीव्र है, इतना तीव्र है कि कोई साधारण व्यक्ति, असाधारण व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकता। उनके दैनिक कार्यों से भी हम समझ सकते हैं। जब कृष्ण वन में चले जाते थे तो उनके हृदय में विरह की भावना इतनी तीव्र रहती थी कि उस दुख को मिटाने के लिए वो केवल एक ही चीज कर सकते थे, और वो था कि दिन भर श्री कृष्ण के बारे में बात करना, उनके नामों का वर्णन करना, और आपस में वो कृष्ण के बारे में ही बातचीत करते रहते थे दिन भर। जब जब वो अपने अपने घरेलू कार्य में व्यस्त रहते थे, बातचीत तो यही चलती थी, चाहे वो अपने घर में रसोई बना रहे हैं, चाहे वो दूध का मंथन कर रहे हैं, चाहे वो गायों का दोहन कर रहे हैं, इन सारे बच्चों का देखभाल कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे होते हैं वो हमेशा केवल श्री कृष्ण के गुणगान ही करते थे। इस तरह से उनका जीवन था। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम भी गोपियों के पद चिन्हों में चल सकते हैं, उनकी नकल नहीं कर सकते लेकिन पद चिन्हों में चलना, मतलब जिस तरह से उन्होंने हमेशा कृष्ण का स्मरण किया, उसी तरह से हम भी हमारे दैनिक कार्य की व्यवस्था ऐसे कर सकते हैं कि हमारा भी कृष्ण स्मरण ज्यादा से ज्यादा बढ़ता रहे। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से अगर हम ऐसे गोपियों की लीलाओं को, ब्रजवासियों की लीलाओं को, कृष्ण की लीलाओं को बार बार सुनते रहें अधिकृत परंपरा में श्रीमद् भागवत से, और हमने नाम संकीर्तन में अगर भाग लिया जो कि युग धर्म है, तो फिर धीरे धीरे से हम भी एक उच्च स्तर की प्राप्ति कर सकते हैं, और इसी तरह के भाव में हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं। वैसे भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी जो है वो तीन प्रकार के हैं। ऐसे भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी बताते हैं, पहले तरह के बांसुरी को वेणु कहते हैं। ये 6 इंच से कम है लंबाई में, और इसके अंदर 6 छेद हैं, छोटे छोटे से छेद हैं, और छोटी है, कभी कभी कृष्ण इसको बजाते हैं। जैसे जैसे श्री कृष्ण की भावना होती है वैसे वैसे वो इन चीजों को बजाते हैं। दूसरे बांसुरी का नाम है मुरली, जो कि 18 इंच लंबा है, 1.5 फुट, और उसमें 4 छेद हैं और अंत में भी 1 छेद है, और इस मुरली को भी कभी कभी भगवान मन चाहे तो बजा लेते हैं। तीसरे प्रकार की बांसुरी जो कृष्ण के पास है उसको वंशी कहते हैं। वंशी 9 इंच लंबी है, 15 इंच लंबी, क्षमा कीजिए, और उसमें 9 छेद हैं, और ये रत्नों से बना हुआ है, ज्वेल्स। जब भी ये वंशी थोड़ी ज्यादा लंबी हो जाती है और रत्नों से बना हुआ होता है तो उसे महानंद या सम्मोहिनी कहते हैं, इसी बांसुरी को। और जब यही बांसुरी और ज्यादा लंबी हो जाती है और सोने का बना हुआ होता है तो उसे आकर्षिणी कहते हैं, और यही बांसुरी जब और भी लंबी हो जाती है इसको आनंदनी या वंशुली कहते हैं, और इस आनंदनी या वंशुली को ग्वाल बाल बहुत पसंद करते हैं। तो कभी कभी ज्यादा से जब कृष्ण भगवान जाते थे वन में, कभी ये भी बचाया करते थे। कभी कभी भगवान श्री कृष्ण पत्तों के बनाए हुए बांसुरों को भी बजाते थे। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण के पास कई तरह के बांसुरियां हैं। जैसे कोई संगीतकार होता है, अगर कोई सितार बजाता है तो उसके पास कई तरह के सितार होते हैं, या कोई वायोलिन बजाता है, हारमोनियम बजाता है, तो अलग अलग प्रकार के उसके पास हारमोनियम होते हैं। उसी प्रकार से कृष्ण वैसे तो सब कुछ बजा सकते हैं, वो संगीत में दक्ष है, निपुण है, लेकिन विशेष उनकी जो उनका जो वाद्य है वो मुरली। तो अलग अलग तरह की बांसुरी उनके पास होती है। आनंद वृंदावन चंपू में कवि कर्णपुर भगवान श्री कृष्ण के बांसुरियों के गुणों का वर्णन करते हैं कि कैसे ये अद्भुत है। कई तरह के विरोधाभास इस बांसुरी में होते हैं। वो क्या है कि पहले तो इस बांसुरी में कितने सारे छेद हैं, फिर भी उनमें कोई दोष नहीं है। जैसे जब किसी चीज में छेद होता है तो हम समझते हैं कि एक दोष है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति कोई तर्क कर रहा है और उस तर्क में हम कोई भूल ढूंढना चाहते हैं, दोष है उसमें, तो हम कहते हैं कि आपके तर्क में बहुत छेद है। अंग्रेजी में कहते हैं देयर आर मेनी होल्स इन योर आर्ग्यूमेंट, मतलब बहुत दोष है आपके इसमें। बाल्टी में छेद होता है तो बाल्टी का दोष है ना। तो किसी चीज में छेद होता है तो दोष है, लेकिन बांसुरी में इतने सारे छेद हैं लेकिन दोष रहित है, बिल्कुल कोई दोष नहीं है उसमें। बांसुरी भगवान की इतनी कड़क है, कड़क है ना, क्योंकि बांबू से बनाई होती है, रत्नों से, सोना से, ये तो नरम नहीं होता, कड़क होता है। इतना कड़क है लेकिन फिर भी जिनके हृदय पत्थर की तरह कड़क है उनको वो नरम कर देते हैं, उनको पिघला देते हैं, सारे ब्रह्मांड को पिघला देते हैं। है खुद कड़क लेकिन सबको नरम कर देता है, यह है कृष्ण की बांसुरी। वैसे कृष्ण की बांसुरी किस चीज से बनी हुई है? बांबू की। बांबू मतलब वंश। वंश का और एक अर्थ है वंश, डायनेस्टी, जैसे चंद्रवंश, सूर्यवंश इत्यादि। तो यह बांसुरी चंद्रवंश से आई तो कितने अच्छे वंश से आई, लेकिन अच्छे वंश का संतान है ये बांसुरी। लेकिन फिर भी जाकर व्रज स्त्रियों को उनके पतिव्रता के धर्म से भंग करता है। जो भी छोटी छोटी गोपियां हैं वो अपने पतियों के साथ है, लेकिन कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो उनका मन तुरंत कृष्ण के पास चले जाता है। तो अच्छे कुटुंब का आदमी ऐसे काम नहीं करता है ना, लेकिन अच्छे कुटुंब में जन्म लेता है लेकिन ऐसे गड़बड़ कर देता है वृंदावन में। तो है तो खोखला अंदर से, अंदर कुछ नहीं है, खाली है। अंदर से देखेंगे तो आपको सीधे आप उस कोने से दिखाई सकते हैं, लेकिन फिर भी नाना प्रकार के सुंदर रागों के लहरों से भरा हुआ है। इस तरह से अनेक प्रकार के विरोधाभास जो हैं वो कृष्ण के बांसुरी में निवास करते हैं। ये है कृष्ण के सुंदर बांसुरी का चमत्कार, ये है कृष्ण की अद्भुत बांसुरी। तो ऐसे श्री कृष्ण ये बांसुरी बजाते रहते हैं, इसलिए कृष्ण के कई नाम हैं बांसुरी पे आधारित। अभी हम काफी देर बोल गए, अभी थोड़ी देर आप बोलिए। अब कृष्ण के बांसुरी पे आधारित आप नाम बोलते जाइए एक से एक। वेणु कृष्ण, वंशीधारी मुरलीधर, वेणु गोपाल, बंसी गोपाल, बंसीधर, बंसी लाल, मुरलीधर, मुरली मनोहर, बंशी बिहारी, हाँ मुरारी नहीं, ये आरी आरी कभी मुरारी नहीं, मुरारी अलग है, जिसने मूर राक्षस को मारा था वो मुरारी। और कोई याद है? अच्छा, कल तक आप ऐसा कीजिए केवल बांसुरी से संबंधित जितने भी कृष्ण के नाम है वो आप लिख कर आइए कल, केवल बांसुरी। अलग कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, वेणु, मुरली, वंशी, फिर धारी, धर, ऐसा कर करके अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के आप कीजिए। केवल बांसुरी के ऊपर कितने नाम है कृष्ण भगवान के, हाँ? तो इसलिए कृष्ण इस चीज से बहुत प्रसिद्ध है। कोई भी एक चिन्ह है कृष्ण का जो कि सबसे, जिसे जान सकते हैं कि ये कृष्ण है, वो क्या है? बांसुरी। यह अद्भुत चीज कृष्ण के बांसुरी के गीत का। तो कैसे गीत गाया बांसुरी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने जबकि वो वन में जा रहे थे? आनंद वृंदावन चंपू में कवि कर्णपुर बताते हैं कि उन्होंने शरद ऋतु के लिए एक खास राग बजाया, मल्लवश्री, जो कि बहुत हल्का है, और इस हल्के राग से भगवान बजाते बजाते वो वहां पर वन में गए। लेकिन क्योंकि भगवान के संबंध से संबंधित हर कोई चीज अचिंत्य है, हमारे बुद्धि के परे है, इसलिए हालांकि मल्लवश्री राग था लेकिन साथ साथ कई ऐसे अन्य राग भी आ रहे थे, जिससे कि सभी लोग सम्मोहित हो रहे थे पूरी तरह से। और भगवान की बांसुरी की ध्वनि वृंदावन के वनों के जो नैसर्गिक संगीत है उसमें मिलता जुलता रह गया। वृंदावन के वन का संगीत क्या क्या है हम चर्चा कर चुके हैं, कल परसों कौन से संगीत है वृंदावन के वन में। पानी की लहरें, कहां कहां पानी की लहरें हैं, झरनों में, नदियों में, तालाबों में, और कौन से संगीत है वन में। भौरे गुनगुना रहे हैं, ये भी संगीत है वृंदावन का। पक्षी अपने अपनी आवाजों में गीत गाते हैं, कोयल, पपीहा, मोर, ये सब अलग अलग पक्षियां अपने अपने धुन में गाती हैं। और क्या है संगीत, पवन चलता है, और पवन चलते चलते जो पत्ते हैं वो भी उनका खरखरखर आवाज आता है। तो ऐसे कितने सारे आवाजें हैं वृंदावन में, और वो भी एक तरह के धुन बजाते हैं। वृंदावन का संगीत है ये, नेचुरल म्यूजिक, स्वाभाविक नैसर्गिक जो संगीत है। तो कृष्ण भगवान इस तरह से अपनी बांसुरी को बजाते थे कि वृंदावन के प्राकृतिक संगीत में मिल जाता था, बिल्कुल एक साथ चलता था। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने कोयलों की आवाज से मिलता जुलता, भौरों की गुनगुना से मिलता जुलता अपने बांसुरी को बजाना शुरू किया। और जब श्री कृष्ण ने ऐसे बांसुरी बजाया तो आश्चर्यचकित हो गए सब, स्तब्ध हो गए सभी प्राणी, और ऐसे सुंदर ध्वनि निकली कि बस इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हालांकि वर्णन करने का प्रयास करेंगे और आचार्यों ने भी किया है, लेकिन वर्णन नहीं किया जा सकता। वैसे जो शब्द इस ध्वनि के प्रभाव को, इसके सौंदर्य को, मिठास को कैप्चर नहीं कर सकते, ये शब्दों से परे है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण से जो भी कुछ संबंधित है वो शब्दों के परे है। उनका सौंदर्य, उनके गुण, उनकी कृपा, उनकी शक्ति, उनके भक्त, उनका धाम, उनका नाम, ये सब कुछ शब्दों से परे है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शब्दों का प्रयोग हमें उनके गुणगान के लिए नहीं करना चाहिए। जहां तक हमारी योग्यता है, हमारी पात्रता है, हमें करना चाहिए। जिस तरह से छोटे छोटे पक्षी आकाश में कम उड़ सकते हैं, जो बड़े पक्षी हैं जैसे गरुड़ इत्यादि, वो ज्यादा ऊंचा उड़ सकते हैं, अपने अपनी पात्रता के अनुसार वो आकाश में उड़ते हैं। आकाश तो असीमित है, और पक्षी अपने अपनी शक्ति के अनुसार उड़ते हैं ऊपर आकाश में। ठीक उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण के गुण, नाम, लीला, सौंदर्य, रूप इत्यादि असीमित है, लेकिन आचार्य भी इनका वर्णन करते हैं। तो भक्तों को, भक्त लोग भी अपने अपने क्षमता, अपने अपने साक्षात्कार के अनुसार भगवान का वर्णन करते रहते हैं। और ये जो आचार्यों के नाना प्रकार के वर्णन हैं, ये उनके साक्षात्कार का एक रूप है जो हम देख सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये सुंदर ध्वनि जब बजाई, वो भी आश्चर्यचकित हो गए कि अरे इतना सुंदर ध्वनि आ रहा है मेरे बांसुरी से। हम कल चर्चा कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण एक और चीज देखकर या दो चीज देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं, वो क्या है। जब द्वारका में वो खुद रत्नों के खंभों में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, तो उस प्रतिबिंब को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतना सौंदर्य, ये कौन है, ये इतना सौंदर्य कहां से आया। मतलब श्री कृष्ण अपने ही सौंदर्य को देखकर भ्रमित हो जाते हैं। हमें नकल नहीं करना चाहिए। अगर द्वारका कृष्ण इतने सुंदर हैं, तो वृंदावन के कृष्ण कितने सुंदर होंगे। वृंदावन के कृष्ण मथुरा और द्वारका के कृष्ण से कहीं ज्यादा सुंदर हैं। ये एक बात है। और किस चीज से कृष्ण भ्रमित हुए थे, कल चर्चा कर रहे थे, याद है। अपने धाम के सौंदर्य को देखकर कि अरे ये मेरा धाम है, मेरे ही शक्तियों के द्वारा इसकी निर्मिति हुई है, लेकिन इतना सुंदर, मेरी शक्तियों का ये कमाल, मेरी शक्तियां यह भी कर सकती है। कृष्ण भगवान अपने धाम के सौंदर्य को भी देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उसी तरह से कृष्ण भगवान अपने बांसुरों की आवाज को सुनकर भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। इतना सुंदर ये ध्वनि कैसे आ रही है, मैं भी बजा तो रहा हूं लेकिन कैसे निकल रहा है मुझे मालूम नहीं। कहने का मतलब है कि भगवान कृष्ण से संबंधित जो भी कुछ है वो अचिंत्य है, सिंपली इनकंसीवेबल, मतलब बिल्कुल उसकी चिंतन नहीं कर सकते, मतलब वो हमारी कल्पना के बाहर है। हर चीज जो भी भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। और फिर भगवान कृष्ण ऐसे सोचते सोचते वन में चले गए। अगर श्री कृष्ण स्वयं इतने प्रभावित होते हैं उनकी बांसुरी के वादन से तो दूसरों का क्या होगा। लेकिन दूसरे के ऊपर कैसे प्रभाव होता है कृष्ण के बांसुरी का, इसकी चर्चा करने के पहले एक और बात कहना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बांसुरी क्यों बजाते हैं। सरल सा प्रश्न है ना, स्वाभाविक है, क्यों बजाते हैं? भक्तों को आनंद देने के लिए, क्योंकि भक्तों को यह ध्वनि बहुत अच्छी लगती है। दूसरा कारण, खुद को आनंद देने के लिए, उनको भी अच्छा लगता है, उनको भी बहुत मधुर लगता है, वो भी रसराज है, नाना प्रकार के आनंदों को लूटना चाहते हैं वो, आध्यात्मिक स्तर के आनंद को। और कारण क्या है, गायों को, मतलब वो भक्त हो गए, गाय भी तो उनके भक्त हैं, गायों को आनंद देने के लिए। और क्या, सबको इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, जब गायों को एकत्र लाना चाहते हैं तो बांसुरी से पहले बुझाते हैं, सारे गाय फिर एकत्र हो जाते हैं। और कारण ये है कि जब वो वृंदावन के वन में प्रवेश करते हैं तो वहां के सारे पेड़ पौधे पक्षी भौंरे पशु सब उनका स्वागत करते हैं और सब उनको प्रेम करते हैं, प्रेम के भेंट अर्पण करते हैं। हम परसों चर्चा कर रहे थे ना किस तरह से वृक्ष स्वागत करते हैं और भौंरे स्वागत करते हैं, तो उनके प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। नहीं तो कृष्ण अपने प्रेम को प्रकट कैसे करेंगे इनके प्रति, इतने सारे पशु पक्षी प्राणी पेड़ पौधे उनको प्रेम दे रहे हैं अलग अलग उनके उनके तरीके से, तो भगवान चाहते हैं कि एक ही कार्य से सबको अपना प्रेम उनके प्रति प्रकट करें, तो बांसुरी बजाकर वो अपना प्रेम प्रकट करते हैं और उनकी बांसुरी के ध्वनि से हरेक प्राणी को जैसे उपयुक्त है वैसे उनको संदेश मिलता है। हरेक प्राणी को लगता है कि कृष्ण मुझे बुला रहे हैं, गोपियों को लगता है कि बांसुरी आवाज ये मेरा नाम बुला रहे हैं, पशु प्राणी सोचते हैं मेरा नाम बुला रहे हैं। ऐसे कृष्ण, ये भी एक कारण है कि कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। और एक कारण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण कारण, आनंद तो है ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन जब कृष्ण चले जाते हैं वृंदावन से गांव से तो वापस पीछे वहां जो ब्रजवासी हैं जो विरह के दुख में तड़प रहे हैं उनके हृदय की अग्नि को शांत करने के लिए, उनके विरह में उनको आनंद देने के लिए, सुख देने के लिए वो बांसुरी बजाते हैं। और जहां श्री कृष्ण दूर चले गए हैं वन में, लेकिन उनकी बांसुरी की ध्वनि धीरे धीरे से आ जाती है। इसलिए जाते जाते जब वो बांसुरी बजाते हैं तो वो ब्रजवासियों के मन में रह जाती है, आंखों में उनके कानों में गूंजती रहती है और प्रिय ध्वनि आगे चलती रहती है, उनके हृदय को सांत्वना देती है। इस तरह से ये कारण है कि कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। जब ऐसे सुंदर ढंग से श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो ये ध्वनि सारे ब्रह्मांड भर में फैल जाती है अपने दिव्य रूप में और सब जगह फैलकर सारे प्राणियों के ऊपर कैसे असर करता है, ये अलग अलग जगह शास्त्रों में बताया हुआ है। श्रीमद् भागवत का दसवें स्कंद का 35वां अध्याय है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका क्या नाम है, जैसे ये 21वें अध्याय का नाम है वेणु गीत, जब गोपियां वेणु का वर्णन करते हैं। 35वां अध्याय कौन सा है, यह भी बहुत प्रसिद्ध अध्याय है। इसको कौन सा गीत कहते हैं, गोपी गीत। ये गोपियों ने भ्रमर की तरह बात करना शुरू किया। तो इस गीत में थोड़ी नव युवती गोपियां जो हैं वो आकर माता यशोदा से कहती हैं कि हे माता, आपका पुत्र श्री कृष्ण इतना सुंदर बांसुरी बजाता है, नए नए धुन नए नए राग उत्पन्न करता है और ऐसे ऐसे सुंदर ढंग से राग का उतार चढ़ाव तान खींच ये वो लहर सब होता है कि ये बिल्कुल अद्भुत है, अचिंत्य है। ये सारे ये बांसुरी के राग या ध्वनि जो है या धुन जब ऊपर जाते हैं और देवलोक में पहुंचते हैं तो इंद्र ब्रह्म शिव आदि देवों के कानों तक पहुंचते हैं। और आचार्य बताते हैं कि इस टीका में कि जब वो इंद्र की बात करते हैं तो इंद्र के साथ उनके जो पार्षद देवता हैं वो भी हैं, जैसे कि अग्नि हैं, यमराज हैं इत्यादि। ब्रह्मा जी के साथ उनके पार्षद हैं जैसे कि चार कुमार हैं, नारद देव हैं, और शिव जी के साथ हैं पार्वती देवी, स्कंद, गणेश इत्यादि। तो ये सब अपने अपने धामों में हैं और इनके कानों में ये बांसुरी की ध्वनि धुन पहुंच जाती है। तब जो भी वो कार्य कर रहे होते हैं उनको छोड़ देते हैं, बहुत गंभीर हो जाते हैं इस ध्वनि को सुनकर और इसका विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं, इसको अप्रिशिएट करने का, उसको पसंद करने का प्रयास करते हैं कि है क्या ये। बहुत कोशिश करते हैं लंबे समय तक, लेकिन पूरी तरह से भ्रमित हो जाते हैं और अपने कोशिश में पूरी तरह से असमर्थ या असफल हो जाते हैं और इसके बाद में केवल हार मानकर अपना हाथ जोड़कर उस ध्वनि को नमस्कार करते हैं कि हम आपको समझ नहीं सकते हैं। हालांकि ये सब जो ऊपर लोक के देवता हैं वो संगीत में विशारद हैं, पूरी तरह से बहुत निपुण हैं, गंधर्व लोक में, विद्याधर लोक में, चारण लोक, सिद्ध लोक, अप्सरागण इत्यादि, ये संगीत को तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। गंधर्व लोक तो खास करके संगीत के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहां पर भी पृथ्वी लोक में अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छे संग से गा सकता है तो कहते हैं लोग, अरे ये तो गंधर्व की तरह गाता है। इसलिए प्रसिद्ध संगीतकार भी हैं, कुमार गंधर्व, बाल गंधर्व, गंधर्व संगीतकार जो शास्त्रीय संगीत गाते हैं। तो गंधर्व लोग भी शास्त्रीय संगीत में इतने निपुण होने के बाद भी वो भी इस राग को समझ नहीं पाते, कैसे रागों का मिश्रण करके उन्होंने कैसे किया है। जैसे अगर कोई शास्त्रीय संगीत में बहुत निपुण हो तो रागों को पहचान सकता है और फिर रागों के बीच में थोड़ा मिश्रण हो क्या हो तुरंत वो समझ पाता है। ये भी एक कला है, इसके लिए बहुत प्रशिक्षण की आवश्यकता है और उसके लिए अमुक प्रकार का कान चाहिए, अमुक प्रकार की बुद्धि चाहिए और थोड़े लोग बिल्कुल समझ सकते हैं। और संगीत के लिए बुद्धि जो चाहिए वो एक विशेष तरह की बुद्धि होती है। जैसे कोई गणित में अच्छा होता है उसके लिए विशेष बुद्धि चाहिए, लेकिन कोई गणित में फेल होता है लेकिन दूसरी जगह बहुत बुद्धिमान होता है। उसी तरह से हो सकता है कि कोई व्यक्ति गणित में फेल हो, दूसरे विषय में फेल हो, संगीत में बड़ी बुद्धि उसकी चलती है और जो राग है, धुन है, स्वर है, उसको इस तरह से याद आती है कि बस कंप्यूटर की तरह, लेकिन दूसरी चीजों में उसकी बुद्धि नहीं चलती। जैसे एक पश्चिम देशों में एक संगीतकार थे जिनका नाम था बेथोवेन, बहुत प्रसिद्ध है, और वो पियानो पे नाना प्रकार के धुन बजाते थे और उनको पश्चिमी संगीत में जीनियस कहा गया है, मतलब बहुत ही विशेष कला उनकी थी। और उनको भी पता नहीं चलता था कि उनको कैसे ये धुन मन में आ रहा है। जब वो कभी चलते थे अचानक उनको धुन आ गया मन में, कैसे आया, किस तरह से आया उनको पता नहीं चलता था, क्योंकि उनको गीता नहीं मालूम था। भगवद गीता से हम समझ सकते हैं कि ये सब चीजें हैं भगवान कृष्ण परमात्मा के रूप में अंदर से प्रेरणा देते हैं, इसलिए किसी को स्मरण आता है, किसी को नहीं आता है, किसी को ट्यूबलाइट चमकता है, किसी को नहीं चमकता है। भगवान श्री कृष्ण 15वें अध्याय में क्या कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, मैं सारे प्राणियों के हृदय में विराजमान हूं और अंदर रहकर मैं उनको स्मृति देता हूं, विस्मृति देता हूं, ज्ञान देता हूं, अज्ञान भी देता हूं। सब कुछ भगवान श्री कृष्ण से अंदर से आता है। तो अगर संगीत के लय, ताल इत्यादि सब समझना, इसके लिए भी कला है, हमारे कर्मों के हिसाब से हम वो कला मिलता। फिर उनको भी ऐसे ही अंदर से मार्गदर्शन आया, और जो भी संगीत के विशारद थे वो बेथेवन के को गीत को संगीत को समझने का प्रयास करते थे, उनको बहुत कठिन होता था। कैसे वो ताल को सुर को ऊपर नीचे करते थे समझना बहुत कठिन होता था, और सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे कि एक व्यक्ति में दिमाग में इतने सारे चीज कैसे मन में रहती हैं, कैसे वो केवल मन में रहकर साले लंबा जो धुन है उसको बजा सकता है। तो ये तो केवल एक साधारण व्यक्ति का है, और बेथोवन से कहीं ज्यादा ये गंधर्व लोक और सब है। और वो कृष्ण के बांसुरी को सुनकर भ्रमित हो जाते हैं, वो विश्लेषण नहीं कर पाते हैं कि कैसे ये राग कैसे धुन बजा रहे हैं श्री कृष्ण, पूरी तरह से भ्रमित हो जाते हैं। और एक जगह रूप गोस्वामी ये भी बताते हैं कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं सारे ब्रह्मांड भर में, जैसे कि चार कुमार इत्यादि जो ऊपर के लोकों में रहते हैं, महर लोक जनलोक तपलोक इत्यादि, वो जब ध्यान में बैठे रहते हैं और उनके कानों में ये बांसुरी की ध्वनि घुस जाती है तो उनका ध्यान भंग हो जाता है और वो स्तब्ध रह जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या सुन रहे हैं हम। जब शिवजी अपना नृत्य कर रहे होते हैं, दिन्दमा होता है ना उनके पास डमरू बजाते रहते हैं, अचानक जब वो सुनते हैं उनका डमरू बजाना बंद हो जाता है और वो खड़े हो जाते हैं, नृत्य भी करना बंद कर देते हैं। सारे लोग अपने अपने जगह में स्तब्ध हो जाते हैं। अनंत देव ने अपने अपने फणों पे अनंत कोटि ब्रह्मांडों को धारण किया हुआ है, लेकिन जब अनंत देव बांसुरी का सुनते हैं तो उनको भी पता नहीं चलता है कि क्या सुन रहा हूं, वो भी झूमने लगते हैं ब्रह्मांडों को लेकर बांसुरी की आवाज सुनकर। ब्रह्मा जी अपने कमल पुष्प के ऊपर बैठे हुए हैं और ऊपर बैठ के सारे सृष्टि का देखभाल कर रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या सृजन करना है, क्या करना है, वो भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जो मरे हुए वृक्ष हैं वो पुनः जीवित हो जाते हैं और हरे भरे पन्ने वगैरह आने लगते हैं उसमें। जो नदियां हैं वो बर्फ बन जाती हैं, जो पत्थर हैं वो पिघल जाते हैं, जो बड़े बड़े पहाड़ हैं वो भी पिघल के नदी बन जाते हैं, जो नदी है वो बर्फ बन जाते हैं। और सारे प्राणियों का जो चिंता है वो नष्ट हो जाता है, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर जाता है। ये है थोड़े शब्दों में वो प्रभाव जो कि कृष्ण भगवान की बांसुरी करती है सारे ब्रह्मांड भर में। एक बार जब कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे वन में, तो बलराम जी ने दूसरे गोपों से कहा कि अरे देखो देखो कृष्ण की बांसुरी से इंद्रदेव की दशा तो देखो, इंद्रदेव तो ऐसे उसकी दशा हो गई कि आनंद में आकर उसके आंसू बह रहे हैं और ये आंसू यहां वृंदावन में गिर रहे हैं ऊपर से, और इसलिए जो वृंदावन है वो अभी देवताओं के लिए एक निवास स्थान बन गया है। इस तरह से कृष्ण भगवान की बांसुरी अलग अलग भक्तों के हृदय में प्रेम का उत्पादन करती है। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बताते हैं कि कई ऐसे चिन्ह होते हैं जिनको देखकर सुनकर सूंघकर इत्यादि भक्तों के हृदय में प्रेम अचानक तीव्रता से बढ़ जाता है, एक प्रकार का ट्रिगर कहिए, कुछ अचानक जैसे किसी को आपने पीछे से चुभ दिया अचानक वो बैठ जाएगा हा? तो उसी तरह से ऐसे कोई चिन्ह होते हैं भक्ति में जिसको सुनकर देखकर हृदय में जो भक्ति है पहले से है वो उभर आती है। जैसे तो दूध जो पात्र में रखा हुआ होता है उसको अचानक तीव्र आग लगेंगे तो उबल के वो बाहर आएगा, उसी तरह से शुद्ध भक्तों के हृदय में जो प्रेम रहता है वो इन चीजों को सुनकर देखकर सुनकर उभर आता है और फिर उसके कंट्रोल के बाहर हो जाता है। जैसे इंद्रदेव के साथ हुआ, वो रोने लगे वो उसे सुनकर बांसुरी को सुनकर, उनको पता नहीं चला क्या हो रहा है। भक्ति रसामृत सिंधु में इसको उद्दीपन कहते हैं, उद्दीपन। जैसे अक्रूर जो कि कृष्ण के मामा थे, उनको कंस ने भेजा था वृंदावन में मथुरा से कि हे अक्रूर आप वहां जाओ और कृष्ण और बलराम को मुझे खत्म करना है, क्योंकि मुझे नारद देव से पता चला है कि ये सारे गोप वंश में पैदा होने वाले सब देवता है और उन्होंने षड्यंत्र रचा है मेरे खिलाफ, और कृष्ण ये स्वयं विष्णु हैं जो कि गोप जाति में जन्म लिए हैं। अभी ये सब मेरी हत्या करने के लिए तुले हैं, तो मैं ये कृष्ण और बलराम दोनों को मार डालना चाहता हूं। तो आप जाकर एक मल्ल युद्ध के बहाने कृष्ण और बलराम को यहां ले आओ, फिर मैं उनको एक पागल हाथी के द्वारा मारा दूंगा, और अगर उससे नहीं मरे तो मेरे चाणूर मुष्टिक तल तोशल इत्यादि ये सब बड़े बड़े योद्धा हैं मल्ल युद्ध करने वाले, तो आप जाके बुलाओ। वैसे अक्रूर तो श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, महाभागवत हैं। वो कंस ने तो उनको साफ साफ बता दिया कि मैं तो कृष्ण बलराम को मारना चाहता हूं और सारे पृथ्वी पर राज जमाना चाहता हूं, कोई छुपा कर बात कही नहीं। और अक्रूर ने कहा हां मैं बुला के लेके आता हूं। तो प्रश्न ये है कि अगर अक्रूर इतने शुद्ध भक्त हैं तो भगवान के अहित के लिए उन्होंने कार्य कैसे किया। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि देखो प्रभु जी मैं उस व्यक्ति को मार डालना चाहता हूं, जरा आप जाके उसको बुलाओ ना, ये जगह खाली जगह, मैं गुंडों को बुला रहा हूं, उसको वहां मार डालूंगा, आप जरा उसको बुलाओ। और आप वास्तव में आप उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं जिसको ये व्यक्ति मारना चाहता है, आप खुशी से जाकर उसको बुलाएंगे, बोलेंगे वहां जाओ। फिर अक्रूर ने ऐसा काम क्यों किया? वो जानते थे कि कृष्ण को कौन मार सकता है। हाँ, अक्रूर को यह लगा, लेकिन फिर भी वो प्रमुख भावना नहीं थी अक्रूर के अंदर। अक्रूर के अंदर ये इच्छा थी कि कम से कम इस बहाने मुझे भगवान का दर्शन होगा, अभी मैं ऑफिशियल विजिट पर जा रहा हूं वृंदावन। जैसे कई बार हमारे कोई भक्त लोग ऑफिस में इधर उधर काम करते हैं और वो चाहते हैं कि वृंदावन जाए, यात्रा में जाए, तो कहां टाइम मिलता है। कभी कभी उनका ऑफिस उनको दिल्ली भेज देता है काम से, तो बोलते यार अभी ऑफिस के काम से दिल्ली आया हूं, तो अभी रविवार के दिन वृंदावन चले जाऊंगा। अच्छा है, तो दिल्ली के लिए काम जा निकालते हैं ऑफिस में ताकि जा सके, फिर वृंदावन चले जा सके। तो उसी तरह से अक्रूर ने सोचा, अभी मुझे ऑफिशियल ऑर्डर मिल गया ऊपर से कि वृंदावन जाओ, तो बहुत अच्छी बात है, कृष्ण का दर्शन होगा, बलराम का दर्शन होगा। तो वो निकल पड़े, और वो तो जानते थे कि कृष्ण बलराम को कौन कुछ कर सकता है। कंस तो अपनी मृत्यु को निमंत्रण दे रहा है, और थोड़ी सावधानी की भी अक्रूर ने कंस को, लेकिन जब देखा कि कंस सुनने वाला नहीं है तो ज्यादा बात को बढ़ाया नहीं, हां में हां मिलाकर अक्रूर वहां से चले गए। और वैसे भी अक्रूर भगवान के श्री कृष्ण के भक्त होने के नाते वो जानते हैं कि श्री कृष्ण की इच्छा क्या है। अभी श्री कृष्ण वृंदावन लीला समाप्त करके मथुरा आना चाहते हैं, मथुरा से फिर द्वारका जाना चाहते हैं, तो भगवान के भक्त भी उनकी लीला में यंत्र होते हैं उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए। तो खैर अक्रूर चल पड़े अपने नए रथ में, और जब वृंदावन में प्रवेश किया उन्होंने, तो उन्होंने रमण रेती में जहां की श्री कृष्ण ग्वाल बालों के संग खेल क्रीड़ा करते थे, वहां उन्होंने श्री कृष्ण के चरण चिन्ह देखे नीचे जमीन में। भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अनेक लक्षणों से सुशोभित होते हैं, इसकी चर्चा हम आने वाले श्लोकों में करेंगे। जैसे कि कोई उदाहरण दे सकते हैं, शंख, पद्म, चक्र, गदा, और क्या है, ध्वज है, छत्री है, वज्र, अंकुश, और मत्स्य है, हाँ, स्वस्तिक, आकाश, आधा चांद, ऐसे बहुत सारे चिन्ह हैं। अगले आने वाले दिनों में समय मिले तो आपको तस्वीर दिखाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल कैसे हैं, कौन से चिन्ह हैं। और इसी से ब्रजवासी पहचानते थे कि कृष्ण यहां से गए हैं कि नहीं है, क्योंकि वो वहां पर देखते थे वृंदावन के धूली में कि चिन्ह वहां पर हैं। और वो चिन्ह जब भी धुले नहीं जाते थे, हम किसी जमीन में जाते हैं हमारे पद चिन्ह पढ़े भी वहां पर वो चले जाएंगे, लेकिन वृंदावन धाम उनको बना के रखते थे उनके पद चिन्ह। तो अक्रूर ने जब ये देखा तो तुरंत भाव विभोर हो गए, कृष्ण का स्मरण करते करते जा रहे थे और ये देखा तो उनकी हृदय की भक्ति उभर आई। वो तुरंत नीचे आए और उस रज में लौटने लगे। इसलिए रमण रेती में जो भी जाते हैं, जब भक्त हम लोग यात्रा में जाते हैं, जब उस स्थान में पहुंचते हैं तो हम सब भक्त भी लौटने लगते हैं अक्रूर जी के पद चिन्ह में चल के, क्योंकि ये उद्दीपना मतलब उनके पद चिन्हों को देखकर धूली में उनके अंदर अचानक ज्यादा भक्ति उभर आई। इसको उद्दीपन कहते हैं। जैसे जब विदुर यात्रा में निकले थे, क्योंकि दुर्योधन ने उनका बहुत अपमान किया था, और घूमते घूमते तीर्थ यात्रा से अचानक उनकी मुलाकात किससे हुई? उद्धव से हुई। ये प्रसंग का वर्णन कहाँ आता है? श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में आता है। और जब उद्धव से मिले, दोनों भक्त थे भगवान के, महान भक्त। जब दो भक्त मिलते हैं तो किसकी बात करते हैं? भगवान कृष्ण की बात करते हैं। और विदुर जी को यह पता नहीं था कि युद्ध हुआ, कैसे हुआ, कौन जीता, कौन हारा, क्या हुआ, क्योंकि वो तो बाहर निकल गए थे। जब उद्धव से मिले वो, तो उद्धव से स्वाभाविक है उन्होंने प्रश्न किया कि कृष्ण कैसे हैं, क्या कैसे चल रहा है वृंदावन में, द्वारका में। उस समय वास्तव कृष्ण भगवान भी चले गए थे। तो जब कृष्ण की बात उन्होंने सुनी, उद्धव ने वो प्रश्न सुना, कृष्ण का गुणगान किया, तो उस कृष्ण के गुणगान से उद्धव भावभर हो गए। वो एक उद्दीपन था, एक इम्पेटस एक आया। तो ऐसे कई चीजें होते हैं। तो ये कृष्ण भगवान की बांसुरी की आवाज भी ये उद्दीपन है, जिससे कि सबके हृदय में ये बहुत ही तीव्र प्रेम जागृत करता है जो भगवान के भक्त हैं। और उसके बाद में अगर ऐसा प्रभाव सारे ब्रह्मांड में अगर हो रहा है सारे प्राणियों के ऊपर, तो गोपियों के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ा होगा? यहां कहते हैं वेणुगीतम स्मरोदयम। अभी हमने चर्चा की तद व्रज स्त्री आश्रित्य वेणुगीतम। अभी इनका असर क्या हुआ गोपियों के ऊपर, व्रज स्त्रियों के ऊपर? स्मर उदयम, स्मर का उदय हुआ। स्मर मतलब कौन? कामदेव। कामदेव कई लोगों के नाम है, लेकिन यहां जो कामदेव का वर्णन है वो कामदेव नहीं है जो कि यह भौतिक जगत में राज जमाते हैं, है ना? ये भौतिक संसार किसके वश में है? कामदेव के वश में है। ये भौतिक संसार में कामदेव के वश में आकर आदमी की बुद्धि क्या हो जाती है? पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाती है। आदमी को पता नहीं चलता है कि दिन है कि रात है, कि मैं आ रहा हूं कि जा रहा हूं। इतनी बुरी हालत हो जाती है व्यक्ति की। इसलिए कहते हैं, अंग्रेजी में कहावत है, लव इज ब्लाइंड, ये तथाकथित प्रेम अंधा है। ये प्रेम नहीं है, ये केवल काम है। लेकिन इतना जबरदस्त असर होता है कामदेव के तीरों का कि एक बार ये तीर किसी को चुभ जाए तो उसको तो पागल ही बना देता है। उसके होश ठिकाने नहीं रहते हैं, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्या उचित है क्या अनुचित है सब आदमी भूल जाता है। और जो लोग बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े तपस्वी हैं, इतने हजार साल तपस्या की, शास्त्रों का ज्ञान है, फिर भी ऐसे लोगों ये लोग शिकार हो सकते हैं। इतिहास में ऐसे कितने वर्णन है ना, मैं सुना है ना, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विश्वामित्र ने 60,000 वर्ष तपस्या की, लेकिन केवल उनके लिए उद्दीपन क्या क्या था? उद्दीपन तो नहीं, उद्दीपन कृष्ण प्रेम के लिए। विकृत उद्दीपन क्या था? मेनका के नूपुरों की झंझन, बस उसे उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो ये है कामदेव, भौतिक कामदेव। ये स्मर, स्मर मतलब कामदेव। कामदेव वही हैं जो कि एक बार शिवजी का ध्यान भंग करने के लिए गए थे, बहुत सारे अप्सराओं इत्यादि के साथ में लेकर गए थे। और उस समय शिवजी को पता चला, शिवजी तो है धीर पुरुष। धीर मतलब जिन्होंने अपने इंद्रियों को पूरी तरह से वश में कर लिया है, कोई भी उनको विचलित नहीं कर सकता है, पार्वती देवी भी नहीं। लेकिन शिवजी को जब कामदेव विचलित करने का प्रयास किया तो उस समय क्या हुआ? आप सब जानते हैं ना वो कथा, शिवजी ने अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव को भस्म कर दिया। इसलिए ये कामदेव प्रजनस चास्मि कंदर्प, ये कंदर्प है। कामदेव कौन, एक नाम है कंदर्प। गीता में जो भगवान बोलते हैं कि मैं प्रजा उत्पत्ति का कारण हूं, प्रजन च अस्मि कंदर्प, तो ये कामदेव है। स्मर, यहां जिस कामदेव का वर्णन है वो नहीं, ये भौतिक कामदेव ऐसे हैं जो कि यहां भौतिक संसार में राज जमाते हैं। ये कामदेव वास्तव में जब उनका नाश हुआ तो वापस वो विलीन हो गए वासुदेव में, जिनके कि वो अंश के अंश हैं। और उनका पुनः जन्म हुआ किसके रूप में, को जानते हैं, प्रद्युम्न, जो कि किसके पुत्र थे, कृष्ण भगवान और रुक्मिणी देवी के पुत्र, रुक्मिणी देवी के पहले पुत्र, वरिष्ठ पुत्र प्रद्युम्न। फिर वही कामदेव वासुदेव का अंशावतार बनके प्रद्युम्न के रूप में आए। तो ये हैं दूसरे स्मर। तीसरे स्मर या कामदेव, वो मूल कामदेव हैं जो कि वैकुंठ में निवास करते हैं। वैकुंठ में आपको मालूम है चतुर्व्यूह है। चतुर्व्यूह क्या है, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वेस्पा स्कूटर, VSP, अब याद रखिए, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। तो कई चीजें याद रखने के लिए हम ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स कर सकते हैं, नहीं तो कैसे याद रखना है सब कुछ। तो ये जो प्रद्युम्न वहां के हैं, वासुदेव, वासुदेव के विस्तृत रूप है प्रद्युम्न। तो ये प्रद्युम्न जो है ये मूल कामदेव है, ये तीसरे कामदेव हुए, चतुर्व्यूह के प्रद्युम्न, ये भी कामदेव। लेकिन इन सबसे बढ़कर जो असली कामदेवों के कामदेव हैं वो है श्री कृष्ण, क्योंकि सबको मोहित कर लेते हैं। इसलिए आदि स्मर ये कृष्ण है, सबको मोहित करने वाले। शिवजी इतने धीर हैं, कामदेव को भस्म करा दिया उन्होंने, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी अवतार लिया तो श्री कृष्ण भी धीरत्व अपना खो बैठे, शिवजी भी अपना धीरत्व खो बैठे। तो ये है श्री कृष्ण का आकर्षण। तो इसलिए श्री कृष्ण असली स्मर है। तो यहां जो स्मर की बात की गई है वो श्री कृष्ण की बात है। स्मर उदय मतलब श्री कृष्ण के प्रति तीव्र प्रेम। कभी कभी गोपियों के प्रेम को भी काम कहा जाता है, लेकिन वो ये संसार का काम नहीं है। संसार का काम वो शुद्ध काम का एक विकृत प्रतिबिंब है। तो इस प्रकार से उनके हृदय में तीव्र प्रेम उत्पन्न हो गया और इसकी वजह से वो बड़े विचलित हो गए। चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं कि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की वेणु का गीत गोपियों के कान में प्रवेश हुआ, वो ऐसे हुआ मानो कि एक पक्षी उनके कानों से अंदर जाकर हृदय में जाकर घोंसला बना दिया, वो वहां जाके निवास करने लगा और उनके हृदय में जाकर नाना प्रकार के उत्पात करने लगा। ये गोपियों के ऊपर असर हुआ। और जब ऐसे असर हुआ तो ये घोंसला जब बन गया अंदर तो सारे बाहर के आवाजें बंद हो गई, ये गोपियां बाकी कुछ भी सुन नहीं सके, केवल वही बांसुरी की आवाज। अंदर क्या चल रहा है, उनके सांस क्या बोल रहे हैं, पति क्या बोल रहे हैं, बच्चे क्या बोल रहे हैं, बाकी ब्रजवासी क्या बोल रही हैं, कुछ नहीं सुना। अगर साधारण संसार के तथाकथित प्रेम में लोग ऐसे करते हैं, ये सिनेमा वगैरह किसके ऊपर आधारित है, ये नाचना कूदना, झेड़ झाड़ के ऊपर नीचे घूमना है ना, ये सब पागल जैसे करते हैं, ये संसार के काम से ऐसा करते हैं, तो असली प्रेम में क्या करेंगे आदमी। तो ये आश्चर्य की बात नहीं है, जो गोपियां कर रही हैं वो असली प्रेम है। और फिर वर्णन आता है कि इस प्रेम की वजह से गोपियां क्या करने लगी, थोड़े गोपियां आंगन में केवल ऐसे ही खड़े रहती, अकेले स्टैचू की तरह। अभी कोई बिल्कुल प्रतिमा की स्टडे आंगन में ऐसे खड़ा रहे, ऐसे आकाश में देखते हुए, क्या बात है, इसको क्या हो गया है। तो कभी कभी गोपियां क्या करती थी, वो दूध उबालने को रखा है आग में, चूल्हे में, बस खड़ी हैं, दूध को देख रही हैं, दूध उबल रहा है, दूध गिर रहा है, लेकिन कुछ पता नहीं चला, ऐसे ही देख रहे हैं दूध को। और थोड़े गोपियां क्या हैं कि कोई भी प्रश्न उनके परिवार के वाले करते थे कि भैया क्या है, बिल्कुल ऐसे उत्तर देते थे जिनका कोई मतलब ही नहीं है, कोई संबंध नहीं है प्रश्न से, प्रश्न कुछ है उत्तर कुछ और ही है। और कभी कभी जब बाहर पब्लिक में जाते थे तो विचित्र कोई बातें बोलने लगती थी। तो इस तरह से ये सारे गोपियां हैं, इनका स्वभाव हो गया। तो सारे ब्रजवासी ये सब देखकर बड़े भयभीत हो गए, नाना प्रकार के तर्क चलने लगे वृंदावन में कि इनको सब क्या हो गया है। फिर सारे ब्रजवासी एक निष्कर्ष पे पहुंचे कि इनके ऊपर भूत सवार हो गया कोई, इसलिए ये लोग ऐसा सब करते हैं। तो दूसरे ब्रजवासी ने बोला, जो कि एक वृद्ध थी, बुद्धिमान थी, उन्हें बोला, अरे इनके ऊपर भूत नहीं सवार हुआ, नंद का पूत सवार हुआ है। पूत मतलब समझते हैं ना, पूत मतलब पुत्र, उस भाषा में पूत बोलते हैं। कन्नड़ में पूत बोलते हैं क्या? पूत कौन सी भाषा में बोलते हैं? कोंकणी में पूत बोलते हैं तो, और ब्रज भाषा में भी पूत बोलते हैं। तो भूत नहीं, पूत सवार, नंद का पूत सवार हो गया इनके ऊपर। मतलब कृष्ण, कृष्ण की वाणी, कृष्ण के बांसुरी के माध्यम से मानो के भूत उनके ऊपर सवार हो गया है। और इस तरह से ये गोपियां बिल्कुल कृष्ण के स्मरण में ऐसे रहती थीं, जैसे कि सूरज हमेशा रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसे लगता है कि सूर्योदय हुआ, कभी कभी सूर्यास्त हुआ, लेकिन सूर्य का उदय नहीं होता है, सूर्य अस्त नहीं होता। लेकिन कभी कभी परिस्थिति के हिसाब से, भूगोल के दृष्टिकोण से, कभी इसको सूर्योदय कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से गोपियों के हृदय में ये शुद्ध प्रेम हमेशा है कृष्ण के प्रति, लेकिन जब ऐसे उद्दीपन हो जाता है जैसे कृष्ण की बांसुरी, तो यही प्रेम का उदय और ज्यादा हो जाता है। इसलिए स्मर उदय कहा गया, स्मरोदयम। इस प्रकार से उनकी भक्ति अचानक ऊपर आ जाती, उभर आ जाती है और ज्यादा तीव्रता से प्रकट होने लगती है। वैसे गोपियां कई तरह की हैं, वरिष्ठ गोपियां, वृद्ध गोपियां हैं, थोड़ी जवान हैं, बच्ची हैं, अलग अलग तरह की हैं, गोप हैं, दूसरे वरिष्ठ गोप हैं, गाय हैं। तो सबके ऊपर बांसुरी का प्रभाव अलग अलग है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। जैसे जैसे व्यक्ति मेरे शरण में आता है, वैसे वैसे मैं प्रतिकार करता हूं या आदान प्रदान करता हूं। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे जैसे इन अलग अलग भक्तों की, गोपियों की, ब्रजवासियों की भावना है, वैसे वैसे उनको वेणु का गीत का अनुभव हुआ अलग अलग दृष्टिकोण से। जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते गोपों के बीच में जा रहे थे, तो ग्वाल बालों को बहुत अच्छा लगा और आपस में झुककर एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे, उनको बहुत आनंद आ रहा था। लेकिन गोपियों के जैसा प्रभाव उनको नहीं हुआ। उसी प्रकार से जब माता यशोदा और वरिष्ठ गोपियों ने बांसुरी की आवाज सुनी, तो उनको वात्सल्य रस हृदय में उभर आया। लेकिन जब गोपियों ने यह सुना, तो वही आवाज उनके हृदय में माधुर्य प्रेम जागृत किया। माधुर्य प्रेम मतलब जो प्रेम प्रेमी और प्रेमिका के बीच में होता है, क्योंकि यह कृष्ण के ऊपर केंद्रित है, इसलिए यह शुद्ध है। तो उनके हृदय में यह माधुर्य प्रेम जागृत हो गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सारी गोपियां केवल दिन भर कृष्ण के प्रेम में हमेशा स्मरण करती रहती थी, और ये जो बांसुरी की आवाज है उनके मन में रहती। अब एक और विचित्र बात है कि जब ये वेणु गीत बोला जा रहा है, जब गोपियां ये श्लोक बोलेंगी, आपस में बातचीत करेंगी, और बोल रहे हैं कि कृष्ण की ध्वनि, बांसुरी की ध्वनि हम सुन रहे हैं, वास्तव में कृष्ण तो जंगल में चले गए थे तब तक, और भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो उनकी बांसुरी की वाणी नहीं सुनाई पड़ रही थी, और न ही कृष्ण भौतिक दृष्टि से दिखाई पड़ रहे थे, क्योंकि गांव के बाहर निकल चुके थे। लेकिन फिर भी ब्रज गोपियां कह रही हैं कि देखो कृष्ण की बांसुरी की आवाज कितनी मधुर है, वगैरह वगैरह आगे जो बोलने वाली है। क्यों ऐसे हो गया? क्योंकि ये ध्वनि का वो स्मरण कर रहे थे। जब कृष्ण गांव के बाहर जाते जाते बजा रहे थे और हर रोज करते थे, तो उस समय जो बांसुरी बजाते थे वो उनके मन में, उनके कानों में गूंजती थी। जैसे कि कई बार होता है, हम मान लीजिए कीर्तन में आए और किसी ने बहुत अच्छा कीर्तन किया, एक धुन बहुत अच्छा था, और हम आधा एक घंटा कीर्तन में रहे, और जब कीर्तन के बाहर गए तो वही धुन वही ध्वनि कीर्तन कानों में गूंजती रहती है ना, स्वाभाविक है। तो उसी प्रकार से जब कृष्ण ने बांसुरी बजाया और बाहर चले गए तो गोपियों के कान में वही ध्वनि गूंज रही थी। हमारे कानों में गूंजना और उनके कानों में गूंजने में फर्क इतना ही है तीव्रता का। गोपियों के कानों में इतनी तीव्रता से वो गूंज रही थी योग माया के प्रभाव से कि उनको ऐसा लग रहा था कि हमारे सामने ही हो रहा है, क्योंकि उनका स्मरण कृष्ण का इतना तीव्र था। 24 घंटे गोपियां श्री कृष्ण का स्मरण करती थीं, और इसलिए उनको लग रहा था कि कृष्ण यहीं पर है, हालांकि कृष्ण वास्तव में दूर चले गए थे। और इस प्रभाव से गोपियों का मन कृष्ण के पीछे पीछे जा रहा था, हालांकि दोनों के शरीरों के बीच में बहुत अंतर था, लेकिन मन कृष्ण के पीछे, कृष्ण के बांसुरी के पीछे। इस प्रकार से जब गोपियों की विरह भावना थी, गोपियों के हृदय में यह सब चल रहा था, तो कृष्ण भगवान ने देखा, और इसलिए उन्होंने इतना अद्भुत जो संगीत है वो अपने बांसुरी से उत्पन्न किया, क्योंकि वो जानते थे कृष्ण गोपियों के प्रेम को देखकर उनका भी उत्साह बढ़ गया, उनका भी प्रेम बढ़ गया, और ज्यादा अमृत उन्होंने बांसुरी में भर दिया, और ये अमृत जो कृष्ण के अधर उनके होठों से जो आई उस बांसुरी में, वो अमृत निकलकर ध्वनि के रूप में प्रकट हुई। इसलिए जितना ज्यादा ब्रजवासी और खास करके गोपियां प्रेमी बन जाती है कृष्ण की, उनकी भावना से प्रभावित होकर कृष्ण ज्यादा अमृत बांसुरी में भरते हैं, और उससे जो ध्वनि निकलती है और मधुर हो जाती है। दिन ब दिन कृष्ण की बांसुरी का बजाना जो है ज्यादा से ज्यादा मधुर होने लगता है। और इसके बाद गोपियों ने आपस में इस स्मर वेग से, स्मरोदयम, क्योंकि कृष्ण भगवान का उदय हुआ था, ये प्रेम उदय हुआ था, इसलिए वो अपने आप को रोक नहीं पाए। वो क्या करने लगे आखिर में बताते हैं, काश्चित परोक्षम कृष्णस्य स्वसखीभ्यो अन्ववर्णयन। आपस में वो बातचीत करने लगी अपने सखियों के साथ में, कृष्ण के बारे में, कृष्ण के बांसुरी के बजाने के बारे में इत्यादि। तो किस तरह से वो बात करने लगी, क्या बात करने लगी, कैसे उनकी दशा थी, और फिर आगे के श्लोकों में उन्होंने क्या बोला, वो हम कल चर्चा करेंगे, क्योंकि काफी देर हो चुका है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बांसुरियां क्या बांबू से बनी थी? नहीं, जैसे हमने बताया, थोड़े बांसुरी ऐसी थी जो कि रत्नों के बने हुए थे, थोड़े सोने के बने हुए थे, थोड़े पत्तों के बने हुए थे, पेड़ों के पत्तों के, तो अलग अलग बांसुरियां थी, अलग अलग चीजों से बनाए हुए, और अलग अलग भाव के अनुसार भगवान इन बांसुरियों को बजाया करते थे, लेकिन ज्यादातर वो बांसुरी की ये भी बजाया करते थे।